आयोजन हुआ उसमें आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला, सबसे पहले आप हमें बताएं।
शशि दुखन जी, गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन पे आती है। मोक्षदा का मतलब है जो हमको बंधन से मुक्त करा दे, और भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश जीवित लोगों की जीवनी को ठीक करने के लिए है कि अपने कर्तव्य को ठीक कर सकें। हमारे मॉरिशस के केंद्र ने इस बार 18 अध्याय की भगवद गीता को 18 जगहों पे 18 दिनों के लिए आयोजन किया था, जो हम पहले दो दिन त्रियोली में गए थे और बहुत अच्छी संख्या में लोग भगवद गीता में रुचि लेकर आए थे, और उसके बाद दो दिन पिचित्रविया में गए थे, और उसके बाद गीता जयंती का अपने मंदिर के अंदर कोई 100 से अधिक, 108 हमारा योजना था कि गीता के 700 श्लोकों का पाठ साथ में 2.5 घंटे तक सब लोगों ने किया। तो उसका हमारा उद्देश्य था कि मॉरिशस में शांति और इसकी प्रगति और लोगों का सुख सुविधा के लिए भगवान को प्रार्थना की गई। और उसके बाद कल से दो दिन, कल और परसों तो सुरीनाम में थे, साउथ की तरफ गए हुए। तो ऐसे ये 18 दिनों के लिए सत्संग गीता का एक अध्याय के हिसाब से 18 अध्याय पूरे करने का रखा हुआ है, और मॉरिशस की जनता जगह जगह पे बड़े प्रेम और उत्साह के साथ आती है। और गीता तो भगवत गीता भगवान का ही वचन है, तो भगवान का वचन सुनने के लिए लोगों में थोड़ा सा जागृति आई है ऐसे लगता है, और लोग आ रहे हैं और कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। तो हमारा तो प्रयास ये है कि जैसे हम कहने जा रहे थे कि हो क्या गया है हमारी मानसिकता को, उदाहरण ऐसे हम देते हैं कि आजकल मोबाइल तो सब खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ एक डब्बे के अंदर एक बहुत सुंदर किताब आता है, कैटलॉग आता है, उसमें लिखा होता है कि इसको ऐसे यूज करना, इतने पावर में डालना, ऐसे करना, लेकिन कोई भी उस किताब को पढ़ता नहीं
है। एक तरफ
कोई नहीं उस किताब को पढ़ता है, कितना कंपनी खर्चा करके उस किताब को छापती होगी, कितने अंदर फोटो रखे हुए, लेकिन कोई नहीं चाहे, हमको मालूम है, ऐसे समझ लेते हैं जैसे ये कंपनी वाले कोई चीज बनाते हैं, मोबाइल के टेप रिकॉर्ड के रेडियो कि कंप्यूटर, तो इतना बड़ा कैटलॉग देते हैं, ऐसे इस दुनिया को बनाने के समय उसके साथ भी ये भगवद गीता कैटलॉग और वेद कैटलॉग आया ब्रह्मा जी के द्वारा, लेकिन हमारी मानसिकता ये बता रही है कि हमने पुस्तकों को पढ़ना ही छोड़ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे को मान लोगों की साइकोलॉजी, जो उनका मनोविज्ञान से पता लगता है कि लोगों की रुचि अब पढ़ने में नहीं रह गई।
आप, मैं आपकी बात से कैसे हद तक सहमत हूँ, इंटरनेट का जमाना आ गया है, लोग सिर्फ कंप्यूटर पर बैठते हैं, इंटरनेट पर चैट करते हैं, लेकिन पढ़ने में यहाँ पर बहुत हद तक जो है इसका प्रभाव जो है
कम हो गया है। इसलिए हम भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा अब वेबसाइट के ऊपर भगवद गीता के ऊपर प्रश्न उत्तर है लोगों के साथ करने के लिए, अथवा हमारी साइट के ऊपर जाकर वो पूरा krishna.com के ऊपर देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कल्पवृक्ष के नाम से अलग डाट, जिसके ऊपर जो भी आप जानना चाहें आध्यात्मिक भगवद गीता और कृष्ण के संदेश के विषय। तो हमने इसको भी लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए ये भी पूरे विश्व के अंदर कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको जैसे कहें कि हमारा उद्देश्य है कि छोटा बच्चा, गांधी जी कहा करते थे कि छोटा बच्चा हमारा बचपन में जब हमारे बात मानता है तभी उसको गीता पढ़ा लेना चाहिए, जब पढ़ता है, जब हमारी बात मानता है तब पढ़ा लेना चाहिए। क्योंकि अभी दो दिन पहले हम हमारे एक मित्र से मिले, वो डॉक्टर साहब अभी कनाडा में मॉरिशस के, बोल रहे थे कि वहां तो हमको पैसा है, सुख सुविधा है, लेकिन संस्कार हमारे बच्चों में होंगे कि नहीं होंगे इस बात का हम जमानत नहीं लेते हैं। और फिर कहते हैं आज कल के बच्चे पैसा हमारा लेंगे, खाएंगे हमारा, लेकिन बात सिर्फ दो चीजों की मानते हैं, एक उनके फ्रेंड्स की और दूसरा इंटरनेट और टीवी की। तो हमने तो उनको कहा कि आजकल की जनरेशन का नाम ही नेक ब्रेक जनरेशन है, गल सब उनका जो गर्दन है वो झुका हुआ है, या कंप्यूटर पे या टेलीफोन पे, ऊपर गर्दन करके देखते नहीं है कि दुनिया में वो क्या रहा है। और उसके साथ वो पेरेंट का, वो माता पिता का भी नेक ब्रेक ही कर देते हैं कर्जा कर करके। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिकता जीवन में बचपन में ही भर दी जाए, यही प्रहलाद महाराज का संदेश था, कुमारम आचरेत। जब बच्चा 5 साल से बड़ा होने लगता है, ये भी उदाहरण आपको बहुत आसान है, आपके मोबाइल में कुछ स्पेस होती, कुछ जगह होती है फोनों के लिए, तो जब वो भर जाती है फिर आप कोई फोन डालेंगे नंबर तो बोलेगा स्पेस नहीं है। तो एक सबके दिमाग में एक स्पेस भगवान ने बना रखी है, बच्चों के दिमाग में वो स्पेस खाली होती है, उसमें अच्छी बातें अगर भर देंगे हम पहले तो खराब बातों के लिए जगह नहीं होगी, बोलता बोलेगा भाई बंद है, खराब खत्म हो गया। अब हो क्या रहा है अभी कि हम इतना कचरा पहले भर देते हैं, जब अच्छी बात करने लगे बोलता है टाइम जगह नहीं है, तो होना नहीं है खराब बात के लिए जगह नहीं, अब अच्छी बात के लिए जगह नहीं है, ये समस्या हो गई है।
इतनी सब बातें स्वामी जी बताए, वाकई में आप बताएं ऐसे युग में गीता का स्थान कहाँ
है? भगवत गीता इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए बेसिकली है, ये बहुत जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस संसार में ये समझ रहे हैं कि हमको मालूम नहीं पड़ रहा है कि कल होने वाला क्या है, जो ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, उनके लिए गीता मार्गदर्शन है। और इसलिए गीता के अंदर भी ऐसे कहा हुआ है कि एवं राज ऋषियो विदुः सकाल एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियो विदुः, ये राज ऋषियों के समझने की चीज थी, राज ऋषि जब इसको समझते थे तब दूसरा श्लोक कहता है यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एवत्रो जनहा, जैसे श्रेष्ठ पुरुष राजा नेता लोग आचरण करेंगे जनता तो केवल उनका अनुकरण ही करेगी, जैसा वो स्थापन करेंगे अपने स्टैंडर्ड जो है वैसा लोग उसको पालन करेंगे। तो पहले हमारे राजा नेता जैसे पांच नेता है नेचुरल, स्कूल में अध्यापक टीचर, आध्यात्मिक गुरु, घर में माता और पिता, तो और राजा देश का राजा, ये नेचुरल गुरु है, ये नेचुरल नेता है, ये इनके जीवन में इस चीज का आचरण होगा, ये इसको समझेंगे तो राजा अगर समझेगा तो प्रजा पूरी, पिताजी अगर आचरण करेगा तो पूरा परिवार, गुरुजी अगर आचरण करेगा इसको तो शिष्य सारे वो करेंगे, और टीचर अध्यापक करेगा तो स्टूडेंट भी उसको करेंगे। इसलिए ये गीता का संदेश बुद्धिजीवी जो बहुत इंटेलिजेंट क्लास के पीपल है, जो फिलॉसफी को जो दर्शन को समझ सकते हैं, ये तो गीता उपनिषद है, उपनिषद वेदों का अंग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी कृपा ये की कि उपनिषद पढ़ने का सबको अधिकार नहीं हुआ करता था पहले, केवल ब्राह्मण लोग जाके गुरु के पास आश्रम में सीखते थे, लेकिन भगवान ने इस गीता के उपनिषद को महाभारत के बीच में रख दिया और महाभारत को कह दिया कि सब वर्गों को पढ़ने का अधिकार है, स्त्री को भी पढ़ने का अधिकार है, काम करने वाले को पढ़कर पढ़ने का अधिकार है, किसी को भगवान ने निषेध किया ही नहीं है। तो गीता की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें अधिकार है ही नहीं, कौन पढ़ सकता है, ये जनहा जो भी, तो ये भगवान की वाणी है, इसलिए भगवान सबके हैं। तो भगवान ने सबको निमंत्रण दिया है, आइए आप इसमें से जहां से भी आपको चाहिए, एक एक शब्द कल्प वृक्ष है। इसमें बहुत सुंदर पहले श्लोक में लिखते हैं परपन पारिजाताय तोत्रे वैक पाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दोहे नमः, श्री कृष्ण कल्प वृक्ष जैसा है, आप अगर उसके शरण में चले जाएंगे तो आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उनके एक हाथ में तो घोड़ों का लगाम है, गीता के ऊपर चित्र आपको पढ़ना नहीं आते, आप ठीक करिए आजकल लोग पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन गीता के ऊपर छपे हुए चित्र में गीता का संदेश सारभूत में है। गीता के ऊपर आपने देखा है क्या है, एक रथ है, रथ के आगे घोड़े चार जुते हुए हैं, घोड़ों में लगाम है और लगाम कृष्ण के हाथ में है, और कृष्ण बैठा है भगवान सारथी की जगह पे और अर्जुन बैठा है ऊपर रथी की जगह पे, रथी ऊपर बैठता है मालिक होता है। तो ये शरीर हमारा जो है ना, ये रथ है,
मतलब शरीर की पूरी,
ये शरीर रथ है, ये शरीर रथ है, इसमें हम जीव आत्मा जो हैं, ये गीता का पहला पाठ ये है कि हम दो चीजों का मिश्रण है, आत्मा भगवान का अंश है और ये शरीर ये मां प्रकृति ने दिया है, प्रकृति का शरीर और भगवान का अंश बीज जीव, ये दोनों मिलते हैं तब ये शरीर बनता है। ये दोनों ऐसे आपस में गुंथे हुए हैं, ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं कि इनको अलग करना संभव नहीं है, एक नहीं है तो दूसरा किसी काम का नहीं है। आत्मा निकल गई तो शरीर घर में अपने बेटे का, पत्नी का, भाई का, बहन का, प्रेमी का कोई घर में 24 घंटे रखने को तैयार नहीं,
नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
तो शरीर का तो तब ही महत्व है जब उसमें आत्मा है, और अगर शरीर है और आत्मा है और शरीर नहीं है तो भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, तो इनको अलग कैसे किया जाए? ये प्रश्न पूछती है देवहूति माता श्रीमद् भागवत में अपने बेटे कपिल को, जो भगवान का अवतार है कपिल देव, कि ये दो ऐसे मिले हुए, इनको अलग करें कैसे? तो हम तो सुन बहुत सिंपल उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं, रेती के अंदर लोहे का बूरा अगर मिक्स हो जाए तो अलग कैसे करोगे? बहुत मुश्किल है अलग करना, एक आपस में इतना मिल जाता है, नहीं किया जाता है। लेकिन एक बहुत बहुत सरल उपाय है, आपके पास चुंबक है, मैग्नेट है, आप मैग्नेट को उस मिट्टी में ऐसे घुमाएंगे तो सारा लोहा उसमें चिपक जाएगा। तो कृष्ण का अर्थ है मैग्नेट, सबको आकर्षण करे, और अगर हम जीवन में कृष्ण को जोड़ते जाएंगे तो ये शरीर के बंधन से अवमुक्त होकर कृष्ण के साथ चपकते जाएंगे। तो कृष्ण मीन्स आकर्षण, जो अपने को अपनी ओर सबको आकर्षण करता है, जैसे चुंबक आपको लोहे को आकर्षण करता है। दोनों लोहे के बने हैं, चुंबक भी लोहे का है, लोहे का बूरा भी लोहे का है। चुंबक बड़ा है, चुंबक शक्तिशाली है, लोहा बेचारा छोटा है। ऐसे जीव छोटा है, भगवान बेअंत है। तो हम भगवान की ओर आकर्षित हो जाएं, ये भगवत गीता का संदेश है। तो अब हम बात वो कर रहे थे कि शरीर रथ है, आत्मा इसमें यात्री है, ऊपर बैठा है जहां अर्जुन बैठा है। अब अर्जुन के रथ को महाभारत के युद्ध के रणभूमि से विजयी होके पार होना था, और जो मुश्किल था, बहुत मुश्किल इसलिए था, लिखा है भीषम द्रोण तटा जयद्रथ जला गंधार नीलो तपला। अरे ऐसी एक नदी बह रही है वेग के साथ जिसके दोनों तट भीषम और द्रोणाचार्य है, दोनों परशुराम के शिष्य हैं, दोनों अर्जुन से ज्यादा वीर हैं, उनके गुरु हैं, उनके पितामह हैं, और कर्ण भी परशुराम का शिष्य है, और उस वो भी अर्जुन के समान का योद्धा है, और फिर अश्वत्थामा अभी तक जीवित है, चिरजीवी है, तो उसको मारा नहीं जा सकता था। तो ऐसे भयंकर युद्ध में से कैवर्तक केशव, एक केवल केशव कृष्ण की कृपा से अर्जुन का रथ विजयी होके पार हुआ। क्यों? इसलिए कि घोड़ों की लगाम कृष्ण के हाथ में थी और कृष्ण सारथी के स्थान पे बैठे थे। ऐसे हमारे शरीर रूपी रथ के घोड़े इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, ये 5 इंद्रियां ये घोड़े हैं, इनका लगाम है मन, और ये मन अगर भगवान के हाथ में दे देंगे, ये भगवत गीता का संदेश है, मैं अर्पित मनोबुद्धिर, कृष्ण कहता है मन मुझे अर्पण करो, मन मना भव मद भक्तो, मन तेरा मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मैं ये मन आधस्त्व, तुम्हारा मन मेरे पास डिपॉजिट करो, नहीं तो कोई चुरा के ले जाएगा। मैं बहुत ये जगह जगह पे कृष्ण मन को मांगता है कि तुम्हारा ये लगाम घोड़े तुम्हारे बेलगाम हो जाएंगे, इसको तुम नहीं संभाल सकते हो, कई जन्मों से तुम ऐसे कई जोनियों में भटक के आ रहे हो, मानव जन्म अब मिला है तो ये मन रूपी लगाम कृष्ण के हाथ में दे दो। और कृष्ण को कहां स्थान दो? बुद्धि में, सारथी बुद्धि है। तो गीता के चित्र को देखने से गीता का सार समझ लेना चाहिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है, कृष्ण के हाथ में मन रूपी लगाम दे दे और कृष्ण को अपनी बुद्धि में निवास कराए। मैं ये मन बुद्धिम निवेशय, निवेश का मतलब घर होता है, तो भगवान को अपनी बुद्धि में निवास कराए तो फिर उसका ये शरीर रूपी रथ संसार सागर से पार हो जाएगा, उसके सारे दुख ताप संताप कष्ट कट जाएंगे। तो गीता का ये पढ़ना नहीं आता है तो केवल इस चित्र को देखिए, और इस चित्र को एक व्यक्ति देख रहा था, चैतन्य महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत के एक मंदिर में गए थे, तो एक व्यक्ति चित्र को केवल देखे, आंखों से आंसू बह रहे हैं और रो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पंडित जी खड़े हो हंस रहे थे, तो महाराज चैतन्य महाप्रभु ने पूछा आप लोग हंस क्यों रहे? बोला ये अनपढ़ है, इसको कुछ पढ़ने नहीं आता, रोज मंदिर में गीता लाके बैठता है, उल्टा पकड़ता है लेकिन रोता रहता है। तो चेतन महाप्रभु ने जाके पूछा कि आप इस गीता में क्या पढ़ते हैं? बोला मेरे को पढ़ना नहीं आता। मेरे गुरुजी ने कहा है गीता का पाठ करना, तो पढ़ना नहीं आता है, तो फिर रो क्यों रहे हो? बोला रो इसलिए रहा हूं कि इस गीता के इस चित्र को देखता हूं और देखता हूं कि भगवान त्रिलोकीनाथ अपने भक्त के घोड़े के लगाम को पकड़ के और उसके रथ को चला रहा है। इतना दयालु कहां भगवान मिलेगा, इसको छोड़ के और कहां जाए हम? केवल इसको देख के मेरे आंखों से आंसू बहती है, कितना भगवान दयालु है कि अपने भक्त का छोटे से छोटा काम करने में उसको कोई कष्ट नहीं है, वो छोटा बनने को तैयार। और इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं अवतार लेकर आता हूं। क्यों आते हो आप अवतार लेकर? क्योंकि आप लोग संसार के अंदर बंद किस चीज से गए हो? कल हमने ये पूछा था सूरीनाम में भक्तों से कि क्या आपको सबसे अच्छा लगता है, सबने बोला पैसा धन। लेकिन हमने बोला धन आपके पास हो और आपका बेटा बीमार हो जाए तो सारा धन लगा दोगे कि नहीं लगा? हाँ भाई लगा देंगे, बेटे के लिए अपने परिवार पत्नी के लिए सब धन लगा सकते। इसका मतलब आपका संबंध जो है बेटा बेटी माँ बाप भाई बहन पति पत्नी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये संबंध है जिसने हमको बांध के रखा है इस दुनिया में। और गीता की आरंभ भी यहां से होता है कि अर्जुन संबंधों के मोह के कारण अपने काम को करने से ना कर रहा था, अपना धर्म नहीं निभा रहा था, क्षत्रिय था, तभी कृष्ण ने गीता बोला। तो कृष्ण अवतार इसलिए लेते हैं जिन बंधनों के मोह के कारण संसार में आप बंधे हुए हो, मैं इतना छोटा आपके बराबर आप जैसा बन के अवतार लेके आ जाऊंगा कि आप मित्र बनाना है तो मुझे बना लो ना अर्जुन की तरह, आपको प्रेम करना है तो गोपियों की तरह मुझसे ही कर लो ना, आपको बेटा चाहिए तो यशोदा नंद की तरह मुझे अपना बेटा मान लो। तो जो रिश्ता हमको संसार में जो हमारा संबंध बांधता है, वही संबंध अगर भगवान के अंदर हो जाए, उसके साथ हो जाए, तो हमारा मुक्ति हो जाएगी, तो वो मुक्ति हो जाएगी, हमारा बंधन। एक महात्मा ने बड़ा आश्चर्य का लिखा है कि ये सुखदेव गोस्वामी जब भागवत में वर्णन करता है यशोदा का, तो कहता है उसके कानों में कुंडल डाले हुए हैं, उसकी साड़ी पीली पहनी हुई है, उसके जूड़े में फूल है। बोला ये महात्मा सन्यासी ये स्त्री को इतना निकट से क्यों देख रहा है? किसी ने पूछा तो महात्मा दूसरे ने उत्तर दिया कि इस स्त्री को निकट से देखेगा तो थोड़ी देर में इसकी गोद में कृष्ण इसको मिलेगा। तो ये महात्मा ऐसे, ये माँ जो है ये कृष्ण के प्रेम में इतनी मगन है कि बस अभी कृष्ण इसकी गोद में आके बैठेगा और ये महात्मा कृष्ण का दर्शन करेगा। और दुनिया में ऐसे किसी को देखोगे स्त्री को तो माया में फंस के नरक में जाओगे। तो वही चीजें एक तरफ आपको, इसलिए दो शब्द हैं, एक है चिंतन एक है चिंता। कृष्ण कहता है अनन्यास चिंतयन्तो माम, और किसी का नहीं केवल मेरा चिंतन करो। लेकिन हम करते हैं संसार की चिंता। चिंता और चिंतन में अंतर तो ये, चिंता किसकी होती है जो हमारे पास नहीं है, जो हमने देखा नहीं है हम पाना चाहते हैं, उसको चिंता कहते हैं। और चिंता कैसी है? चित्ता जैसी है। चिंता और चित्ता में केवल एक बिंदु का अंतर है, और चित्ता जलाती है मुर्दे को और चिंता जीते को जलाती है। लेकिन इसी चिंता को चिंतन में बदल दो, एक और बिंदु बढ़ा दो। चिंतन का मतलब भगवान का स्मरण करना, वो भी देखा नहीं है लेकिन मालूम है कि ये हमसे पहले कई महात्माओं को इसने उद्धार किया है और कितनों से इसने अपने प्यार के कारण उनकी सेवा की है। बहुत सुंदर कृष्ण स्वयं कहते हैं मृत्यु संसार सागरात भवामी निचरात पारत, मृत्यु संसार सागर से मैं तेरे को गोद में उठा के और नाव में चढ़ा दूंगा इस भक्ति की और तेरे को पार कर दूंगा, केवल तुम इतना करो अपना मन और बुद्धि मेरे पास रख दो, नहीं तो तुम इस दुनिया में फंस जाओगे। तो ये बड़ा बड़ा सरल संदेश है भगवत गीता। भगवत गीता जीवित शास्त्र है, मरने के बाद का नहीं है। बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, इसी जन्म में अगर काम और क्रोध के वेग को आप रोक सहन कर सकते हो तो आप निश्चित रूप से भगवान से जुड़ जाओगे और इस संसार में सुखी रह सकते हो। इह लोके इस संसार में, ऐसे लिखा है कृष्ण पांचवें अध्याय का ये श्लोक है। शक्नोति यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भवम वेगम सस्युक्त ससुखी नरह। शक्नोति, ये आपको तो भाषा का शब्द भी आएगा, शक्नोति हो सकता है, ये क्या हो सकता है आपसे अगर बर्दाश्त हो सकता है, सहन हो सकता है, कब कब? जब तक ये शरीर आपका जीवित है। जीवित शरीर में अगर काम और क्रोध के वेग को सह सकते हो, वेग किसको कहते हैं? थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है। क्रोध हमको आता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब क्रोध आता है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम क्रोध के ही नौकर बन जाते हैं, क्रोध के ही हम पुतले बन जाते हैं, वश में हो जाते हैं, उसके पुतले बन जाते हैं, और अपने पराए का पता नहीं लगता। वो वेग थोड़ी देर के बाद उतर जाता है तो हमें बहुत पश्चाताप होता है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे काम का भी वेग होता है। तो इन दो वेगों के समय कोई अपने आप को अगर सहनशीलता कर ले तो कृष्ण कहता है वो मुझको पालेगा और सदा के लिए संसार में सुखी रहेगा। तो ये तो काम और क्रोध दो बड़े शत्रु हैं। इस शत्रुओं को आगे छठे तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि पाप कौन कराता है, कृष्ण अथ केन प्रयोग तो यम पापम चरति पुरुष है अनिच्छन वार्षण, इच्छा नहीं है, कोई जबरदस्ती पकड़ के हरा करा रहा है, जैसे बैल को नाक में नथेली डाल के पकड़ के चलाते हैं तब गाड़ी खींचता है और हल खींचता है, नहीं तो बैल काम नहीं। ऐसे आदमी से पाप कौन कर रहा है? कृष्ण कहता है काम एष क्रोध एष, ये काम और क्रोध तुमसे पाप कराते हैं। ये क्रोध काम और लोभ ये नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ नरक द्वारम, तो इनसे बचना चाहिए जीवन में। ये गीता का संदेश है। मानव जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और उसका उद्देश्य है ऐसे दिव्य आध्यात्मिक भगवान के संदेश को समझकर अपने जीव को जीवन को संतुलित चलाना, बैलेंस युक्त आहार विहार से। भगवान खाने के लिए भी बोलता है खाओ, लेकिन पूरा खाओ, ना ज्यादा खाओ ना कम खाओ, ज्यादा खाओगे तो सो जाओगे, कम खाओगे कमजोर हो जाओगे। युक्त आहार विहार भी, घूमने जाना है तो युक्त तीर्थ यात्राओं में घूमने जाओ, एक महीना छुट्टी है चले जाओ हरिद्वार, गंगा के किनारे बैठ के स्नान करो, गर्मी में आनंद लो, और जमुना के किनारे जाके वृंदावन में भगवान की लीला का स्थान देखो, जगन्नाथपुरी चले जाओ भगवान जगन्नाथ को देखो, द्वारका, इतने भगवान के तीर्थ स्थान है, जहां ताओ तो आपका विहार भी अच्छा हो जाएगा और वहां आपका मन भगवान की लीलाओं में लग जाएगा। और चले जाएंगे कि कहीं डिज्नी वर्ल्ड को देखने के लिए तो वहां तो आपको काम क्रोध लोभ ये पैसा लोभ इसके अंदर मन जाएगा, जो चीज देखोगे मन उधर ही जाएगा, ये मन की आदत है। इसलिए युक्त विहार भी बता रही है गीता। तो गीता आपके जीवन में एक जीने की शैली है, वो सीख जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे श्रोता अगर इस विषय जो जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, हम अपने श्रोताओं को कहेंगे कि आपके पास इस विषय से गीता से संबंधित कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई विचार, अगर किसी इस विषय से आपके अंदर द्वंद हो या कोई ऐसा सवाल उठता हो आपके दिमाग में जिसे आप पूछना चाहते हैं, तो आज बहुत अच्छा मौका है। स्वामी जी हमारे स्टूडियो में हैं, हम एक भजन के बाद अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। टेलीफोन लाइन आप लोगों के लिए खुली हुई है।
प्रैक्टिकल।
और आजकल लोग जो है ना, मैं यही सवाल आपसे पूछूंगी, गीता को सिर्फ एक ग्रंथ मानकर, बहुत बड़ी चीज मानकर,
कृष्ण कन्हैया नंद का नाला जब जब बंसी बजाए, सुध बुध भूले ग्वाल बाल सब मन ऐसा भरमाए, मन ऐसा भरमाए, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया नंद का लाला जब जब बंसी।
फिर यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ गए आपकी यात्रा?
यहाँ से मैं गया था मई में, फर्स्ट मई को ऐसे कुछ गया था, और जून बेंगलोर में था, गर्मी का जून पूरा बेंगलोर था, और बेंगलोर और आगे चला गया था, फिर समुद्र के किनारे तीर्थ स्थान है मध्वाचार्य का बहुत बड़ा, उड़पी, उड़पी का दर्शन करके फिर हैदराबाद में आया था, नहीं बेंगलोर से सीधा अहमदाबाद चला गया, तो तीन दिन का कोई अहमदाबाद में था सम्मेलन, अहमदाबाद से फिर हैदराबाद में था 10 दिन सत्संग, तो साउथ इंडिया हैदराबाद से, तब जुलाई हो गई फिर वापस लौट के आ गया था वृंदावन, फिर आगे से जन्माष्टमी नागपुर में था, इस बार बाहर नहीं गया, इस बार भारत में ही रहा, नागपुर के बाद बॉम्बे था, बॉम्बे पर नागपुर एक बार गया था,
बॉम्बे में अभी जो कैसा हो उसमें वहाँ पर
नहीं नहीं तब मैं वृंदावन था, उसमें हादसे के दूसरे दिन यहाँ आ रहा था, हादसा बहुत खराब हुआ।
हाँ
कौन थे क्या कर रहे हैं, देखे कहाँ से कैसे हुआ, क्या क्या कह रही है उनकी रिसर्च। अच्छा।